Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। सैकड़ों साल पहले इतालवी शहर वेनिस में एक अजीब सा जश्न मनाया जाता था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 18वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे वेनिस के जश्न की। शहर का मेयर एक दिन अपनी नाव पर समुद्र में जाता था, अपनी जेब से एक शादी की अंगूठी निकालता था, उसे एक पल के लिए समुद्र की ओर करता था और फिर सम्मानपूर्वक उसे पानी में फेंक देता था। इस तरह वो समुद्र के साथ अपनी शादी रचाता था। ये रस्म वेनिस और समुद्र पर हुकूमत का प्रतीक थी। ये एक ऐसा शहर था जहाँ मशहूर नाविक रहते थे और उन्होंने समुद्री व्यापार से बहुत धन दौलत कमाया था। उत्तर और दक्षिण से यूरोपीय व्यापारी वेनिस का रुख करते थे और तट पर उन जहाज़ों का इंतज़ार करते थे जो मिस्र और सीरिया से लौटते थे। वेनिस के व्यापारी पूर्वी देशों से आयात किए गए मसाले, कपड़े, कालीन और रेशम खरीदते थे और फिर उसे यूरोपियों को बेच दिया करते थे। इसीलिए पूरे यूरोप से सोने और चांदी के सिक्के वेनिस में बरसते थे। वेनिस यूरोप का सबसे अमीर शहर बन गया था। लेकिन इस शहर के कुछ अमीरों ने समुद्री व्यापार में हाथ आजमाने और इस सफर में पेश आने वाले खतरों का सामना करने के बजाय व्यापार करने वाले लोगों को ब्याज पर पैसे देना शुरू कर दिया। हालांकि पादरियों ने इसका विरोध किया, लेकिन यहूदियों के बीच ये एक प्राचीन परंपरा थी। हालांकि वे भी सिर्फ गैर यहूदियों के साथ ही इसे जायज़ मानते थे और अपने धार्मिक भाइयों को ब्याज पर कर्जा नहीं देते थे, उनसे वो ब्याज नहीं लेते थे। अमीर यहूदी तट पर बैंक कही जाने वाली बेंचों पर बैठते थे और व्यापारियों के साथ लेन देन करते थे। आगे चलकर पैसे का ये लेन देन यूरोप के दूसरे शहरों में भी शुरू हो गया। वहाँ के लोगों ने भी वेनिस के बैंकों को आइडियल बनाया और इसी नाम से वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की। 12वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में सोने और चांदी की काफ़ी कमी थी, क्योंकि जो सिक्के थे उनसे एशिया से आने वाला सामान खरीद लिया जाता था, जिसकी वजह से सोने और चांदी का भंडार तेज़ी से घट रहा था। यूरोप के कुछ हिस्सों में सिक्कों की कमी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग इसके बजाय मिर्चों और गिलहरी की खाल का इस्तेमाल करने लगे। वे पूर्वी यूरोपीय देशों के युवाओं को गुलाम के रूप में एशियाई देशों के लोगों को बेच दिया करते थे। यूरोप में पैसे की कमी के कारण कई व्यापारी दिवालिया हो गए थे और जो लोग ब्याज पर पैसा उठाते थे वो भी अपनी जमा पूंजी गंवा चुके थे। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यूरोपियों ने बड़ी संख्या में समुद्र में अपने जहाज डाले और दूसरे महाद्वीपों का रुख किया। इनकास या दक्षिण अमरीकी मूल निवासी सोने को सूर्य के पसीने की बूंदें और चांदी को चंद्रमा के आंसू मानते थे। वे इसका इस्तेमाल सिर्फ आभूषण बनाने के लिए करते थे, लेकिन जब उन्होंने यूरोपीय लोगों की इसमें बेतहाशा दिलचस्पी और सूर्य के पसीने और चंद्रमा के आंसुओं तक पहुंचने की ललक देखी तो वे हैरान रह गए। स्वदेशी कबीलों में से एक के सरदार मानको कैपेक ने कहा था, अगर इंडीज पर्वत श्रृंखला की सारी बर्फ सोने में बदल दी जाएगी तब भी यूरोपीय संतुष्ट नहीं होंगे। इनकास को ये नहीं पता था कि यूरोपीय लोग चांदी का उपयोग सिर्फ आभूषण बनाने के लिए नहीं करते, उन्होंने इसे पैसे में बदल दिया है। 1545 में डिएगो ग्वालिया नाम के एक मूल निवासी ने एक पर्वत की खोज की जो पूरी तरह से चंद्रमा के आंसुओं से बना हुआ था, यानी शुद्ध चांदी का पहाड़। इस पर्वत की खोज ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। स्पेनिश तुरंत इस खड़ी खदान के इश्क में डूब गए। उन्होंने आसपास के गांवों के निवासियों को मजदूरी पर रखा और उन सभी को चांदी निकालने का काम सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने काम लेने और भुगतान का तरीका बदल दिया और मूल निवासियों को बेघारी करने पर मजबूर कर दिया। 17 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों को उस क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जहां आज पेरू देश स्थित है। इन लोगों को साल के आधे समय तक खनन का काम करना पड़ता था। खनिकों की बड़े पैमाने पर मौतें एक सामान्य घटना मानी जाती थी। उन्हें खदान से अलग की कई चट्टानों को तोड़ना और उन्हें पारे के साथ मिलाना होता था। फिर पारे को शुद्ध चांदी से अलग करने के लिए मिश्रण को धोना और गर्म करना पड़ता था। पारे के विषैले धुएं उनकी सेहत को दीमक की तरह चाट रहे थे। पहाड़ में खोदे एक बड़े से कुएं की गहराई लगभग 250 मीटर थी। मजदूर पत्थरों के टुकड़ों को थैलों में भरते थे, थैलों को अपनी पीठ पर लादते थे और कुएं की छोटी और उबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर चढ़ते थे। उनमें से कई सीढ़ियों पर फिसलकर गिर जाते थे और कुएं की तह में चले जाते थे। जो पत्थर नीचे दूसरे मजदूरों के सिरों पर गिरते थे उनकी मौत हो जाती थी। स्पेनिशों ने इस चांदी के पहाड़ के बगल में पोटोसी नामक एक शहर बसाया। उन्होंने शहर में प्राप्त चांदी को स्पेनिश सिक्कों या पेसोस में बदला और जहाज़ों में भरकर अपने देश भेजा। एंटोनियो डी ला कैलांचा पादरी ने अपने संस्करण में लिखा है, पोटोसी में ढाले गए प्रत्येक सिक्के की कीमत मूल निवासी 10 पुरुषों के जीवन की कीमत है। एक अन्य शख्स ने इस चांदी की खदान की तुलना नरक के मुहाने से की थी, जहां सबसे खुशनसीब लोगों का भाग्य मौत है। जो लोग खुशनसीब नहीं थे उन्होंने अपना बाकी जीवन भयानक पीड़ा और दर्द में बिताया। हर हफ्ते खदान के नए श्रमिकों में से आधे अपंग हो जाते थे। स्पेनिशों ने 200 साल से ज्यादा समय तक इस पहाड़ से चांदी निकालना जारी रखा। 1556 और 1783 के बीच उन्होंने इस खदान से हर साल 170 टन चांदी निकाली। पोटोसी की जनसंख्या हर दिन बढ़ती जा रही थी और यह शहर कई यूरोपीय शहरों से भी बड़ा था। स्पेनिश भाषा में इस शहर के बारे में आज भी एक कहावत प्रचलित है, अगर कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जो आजमाने लायक है और जिससे वो खुशनसीब बन सकता है तो वो कहता है कि ये पोटोसी के योग्य है। स्पेनिशों के दक्षिण अमेरिका से बहुत पैसा मिल जाने के बाद एक नई हालत हुई। उन्होंने ये पैसा तेज़ी से खर्च करना शुरू कर दिया। अब वे दुनिया में जहाँ से जो कुछ भी चाहते थे उसे खरीद सकते थे। उनका धन तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप में धीरे धीरे पैसों का अकाल खत्म होने लगा, लेकिन क्या वेनिस में बैंकों पर बैठे लोग इस स्थिति से खुश थे? इस धन का उन्हें कितना हिस्सा मिला? इससे पहले तक वेनिस मैग्नेट की तरह यूरोप के धन को अपनी ओर खींचता था, लेकिन जब लोगों ने अमेरिका का रुख किया और मूल निवासियों के सोने और चांदी को यूरोप लाना शुरू किया तो एक समूह ने समुद्र के रास्ते वेनिस को बाईपास करते हुए एशियाई सामान को यूरोप के लिए आयात करना शुरू कर दिया। यूरोपीय लोगों को अब अपने लेन देन में वेनिस की मध्यस्थता की जरूरत नहीं रही। वेनेजियन की जिनके शासक ने समुद्र के साथ अपनी शादी का जश्न मनाया था, अब विभिन्न यूरोपीय शहरों में अनगिनत सोने और चांदी के सिक्कों के प्रचलन को हसरत भरी निगाहों से देखते थे। उन्होंने वेनिस के बैंकरों की नकल करने वाले डचों को भी व्यापार करते हुए देखा था, लेकिन अब एम्स्टर्डम यूरोप का मौद्रिक और वित्तीय केंद्र बन गया था। डचों ने वेनेजियनों के छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में बदल दिया था। अमीर लोग धीरे धीरे वेनिस को भूल गए। अब उन्होंने एम्स्टर्डम में किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। अमेरिका और दुनिया का चक्कर लगाकर पूर्वी एशिया पहुंचने वालों के अलावा कुछ लोगों ने अफ्रीकी महाद्वीप का रुख किया और उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के अफ्रीका में खर्च किए। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सोना खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अफ्रीका के कई हिस्सों में खरीदने और बेचने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाता था, جو یورپیوں کے لیے عجیب اور ادبھت تھا۔ نائجیریا، سیرالیون، کوٹ ڈیوائر اور کئی انیہ کھیتروں میں لوگ سمندری موگے سے بنے موتیوں کو پیسے کے روپ میں استعمال کرتے تھے۔ ان موتیوں کے بیچ میں ایک چھید ہوتا تھا اور ان کی باہری سطح پر کھانچے بنے ہوتے تھے۔ افریقی مونگے کے سکوں کو ایک دھاگے میں پرو کر اپنی کمر میں باندھتے تھے۔ اس طرح ان کے پاس دھن اور سمپتی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جب یورپیوں نے یہ دیکھا تو وہ ترنت کام پر لگ گئے اور کارشالاؤں میں انہوں نے مونگا مدرا کا بڑے پیمانے پر اتپادن شروع کر دیا۔ ان پیسوں سے انہوں نے افریقی قبیلوں کے سرداروں سے کرشی اتپاد، مویشی، کپڑا اور غلام خریدے۔ افریقہ کے کچھ مول نواسی ایک پرکار کے بینگنی سمندری سیپ کا اپیوگ پیسے کے روپ میں کرتے تھے اور اسے ویمپم کہتے تھے۔ یورپی لوگوں نے اپنی کارشالاؤں میں ویمپم بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کانچ کے پیسٹ سے ان سمندری سیپوں جیسے اتپاد بنائے اور مول نواسیوں کے ساتھ ویاپار میں ان کا اپیوگ کیا۔ افریقہ میں ان مدراؤں کی بھرمار سے اس کے مول میں کمی آئی اور سامان بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ یورپی اتہاسکار اس استھتی کو افریقہ میں مہنگائی کی لہر کہتے ہیں۔ افریقیوں نے یورپی لوگوں کے دوارا پیسوں کے اتپاد کرنے کے خطرناک پریناموں کے خلاف سنگھرش شروع کر دیا۔ یورپی ویاپاریوں نے ان پیسوں سے افریقی اتپادوں کو پشمی دیشوں میں بیچ کر کافی دھن ارجت کیا جو انہوں نے لگ بھگ مفت میں حاصل کیا تھا۔ کئی ویوسائی اس دھن سے نئے سودے کے لیے ایمسٹرڈم گئے۔ ایمسٹرڈم کے بینک وینس کے بینکوں سے ادھک آدھنک تھے۔ یہ بینک ادھک لابھ دیتے تھے اور چیک اور ونیمے بل بنا کر اپنے گراہکوں کو دور دراز کے کھیتروں میں لین دین میں آسانی کرنے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ایمسٹرڈم میں کچھ لوگ اتنے دھنی ہو گئے کہ یورپ کے اتہاس میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ تیزی سے امیر بن کر ابھرنے والے ایک ورگ پر راجاؤں اور سرکاروں کی نربھرتا بڑھنے لگی۔ جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ کے پونجی پتی ورگ یدھوں کے بھگتان کے لیے سرکاروں کو قرض دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے وبھن کھیتروں میں یورپ کے سروچ دھارمک نیتا پوپ کا سمرتھن حاصل کرنے کے لیے پادریوں کو بھگتان بھی کیا۔ اس پرکار سرکاریں اور چرچ دونوں ہی پونجی پتیوں پر نربھر ہو گئے۔ ایک ایسا پریوار کے جس کے کئی یورپی شاسک اور پادری قرضدار تھے فوگر پریوار تھا۔ جوہان فوگر کی آکسبرگ شہر میں کپڑے کی ایک چھوٹی فیکٹری تھی۔ کچھ سمے بعد فوگر کو احساس ہوا کہ انہی کپڑوں کی تلنا میں سوتی کپڑوں میں فائدہ زیادہ ہے۔ انہوں نے سوتی کپڑے کا اتپادن شروع کر دیا۔ گراہکوں نے ان کپڑوں کا بڑے اتساہ سے سواگت کیا۔ ادھک لابھ کمانے کے لیے فوگر نے اپنی کارشالا کے لیے آوشک کپاس کی آپورتی سوئم کرنے کا نرڑے کیا۔ کپاس کے آیات میں کچھ سمے بتانے کے بعد انہوں نے ریشم ویاپار کو ادھک لابھدائک پایا، جس کے بعد انہوں نے کپڑا اتپادن چھوڑ دیا اور ریشم اور مسالوں کا آیات شروع کر دیا۔ جوہان فوگر کی مرتیو کے بعد ان کے بیٹے جیکب نے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا۔ جیکب فوگر نے پاریوارک پونجی سے ایک بینک کی استھاپنا کی اور آسٹریا کی تانبے کی کھدانوں سے تانبا نکالنا شروع کیا۔ کھیتر میں تانبے کی قیمت بڑھنے کے لیے انہوں نے انیہ ویاپاریوں کے ساتھ سمجھوتا کیا کہ وہ اس کھیتر میں تانبا نہیں بیچیں تاکہ آپورتی کم پڑ جائے اور قیمت بڑھ جائے، جسے ہم جمع خوری کہتے ہیں۔ ایک بڑا بینکر ہونے کے باوجود جیکب فوگر نے دوسرے بینکوں سے لون لیا۔ بینکروں کو پتا تھا کہ ان کی سمپتی سرکاروں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ کافی کم در پر آسانی سے انہیں لین دین کرنے لگے۔ جیکب اسی پیسے کو ویاج کی زیادہ در کے ساتھ کنگ کو قرض کے طور پر دینے لگے۔ جرمن سامراج کے نکٹ ہونے کے لیے انہوں نے چارلز پنچم کو پیسہ دیا۔ آسٹریا کے کنگ فریڈرک تریتی اور میکسیملین پرتھم نے بھی ان سے بھاری قرض لیا۔ جب آسٹریا کے کنگ نے فوگر کا قرض لوٹانے میں دیری کی تو جیکب نے انہیں لکھا، یہ اسپشٹ ہے کہ مہا مہم میری مدد کے بنا شاہی تاج کبھی بھی نہیں پہن سکتے تھے، لیکن اس ڈیل سے مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر میں فرانس کا سمرتھن کرتا تو مجھے بھاری منافع ہوتا۔ مجھے آشا ہے کہ میری سیوا کے مطابق مہا مہم بقایا راشی کا شیگھر بھگتان کریں گے اور بیاج در ادا کرنا نہیں بھولیں گے۔